जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमोन्नतीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Radha Giridhare Radha Giridhare Radhe Jai Jai Jagannath Jai Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Naranitai, 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 Jaya Naranitai. Nitai Gaura Haribha, 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 Haribha. Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Nevim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiret Nashta Praye Sabadresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishike Srimad Bhagavatam Skanda 9 Adhyay 4 Shloka Sankhya 45 Yaha Mam Atithim Ayatam Atityena Nimantriya Cha Adatva Bhuktavan Tasya Tadyaha Te Adrashe Te Darshaye Palam யோ மாமதிதிம் ஆயாதம் யோ மாமதிதிம் ஆயாதம் ஆதித்யேன நிமந்த்ரியச அதத்வா புக்தவம் தஸ்ய அதத்வா புக்தவாம் தஸ்ய சத்யஸ்தே தர்ஷதே ஃபலம் யோ மாமதிதிம் ஆயாதம் ஆதித்யேன நிமந்த்ரியச அதத்வா புக்தவாம் தஸ்ய சத்யஸ்தே தர்ஷதே ஃபலம்
தர்ஷயேத் ஃபலம்
సోమామతి మాయాతం ఆదిత్యేన నిమంత్ర్య చ భక్తవాన్ సత్య దర్శయేత్ ఫలం యోమామతి మాయాతం అదత్వా భుక్తవాన్ సస్య సద్యస్తే దర్శతే ఫలం. యహ జో వ్యక్తి మాం ముజ్కో అతిథిం అతిథికో ఆయాతం ఆయా హువా ఆతిథ్యేన అతిథి కే రూప్ మే సత్కార్ ద్వారా నిమంత్రియ నిమంత్రణ దేకర్ స భీ అదత్వా భోజన్ దియే బినా భుక్త్వాం స్వయం ఖాలియా తస్య ఉస్కా సద్యః తురంత్ తే తుమారా దర్శ్యతే దిఖ్లాఊంగా ఫలం పరిణామ్ ఫల్ అనువాద తాత్పర్య డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ గారు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ చ అనువాద్ మహారాజ్ అంబరీష్ తుమ్నే ముజే అతిథి కే రూప్ మే భోజన్ కే లియే బులాయా బులాయా హై లేకిన్ తుమ్నే ముజే నా ఖిలాకర్ స్వయం పహలే ఖా లియా హై తుమ్హారే ఇస్ దుర్వ్యవహార్ కే కారణ్ మే తుమ్కో ఇస్కా భాజా ఖిలాఊంగా చక్లాఊంగా. తాత్పర్య భక్త తథాకథిత యోగి ద్వారా పరాజిత్ నహి కియా జా సక్తా యహ దుర్వాసా ముని ద్వారా మహారాజ్ అంబరీష్ కే ప్రతాడిత్ కర్నే కే ప్రయాస్ కే అసఫల్ హోనే సే సిద్ధ హో జాయేగా. హరవా భక్తస్య కుతో మహత్ గుణా యే భగవత్ భక్త్ నహీ హై జో భగవత్ భక్త్ నహీ హై వహ్ కితనా హీ బడే యోగీ దార్శనిక్ యా కర్మీ క్యో నా హో సుపాత్ర నహీ మానా జాతా కేవల్ భక్త్ హీ సభీ పరిస్థితియో మే విజయీ హోతా హై. జో భీ దుర్వాసా తథా మహారాజ్ అంబరీష్ కీ స్పర్ధా కీ ప్రస్తుతి ప్రస్తుత ఘటనా సే దేఖ్ సక్తే హై. ఓం జ్ఞానగ్రంథస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురోన్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదామహం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురౌ శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురన్మైష్టమాం శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాం సహగణలితా శ్రీశాకాన్వితాం హే కృష్ణకరుణా సింధౌ దీనబంధౌ జగత్పతే గోపేషు గోపికాకాంతరాధాకాంత నమోస్తుతే నర్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసృతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दूरवास का मुनि और अम्बरीश महाराज के प्रसंग है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण इस लीला में, अम्बरीश महाराज दूरवास मुनि की लीला में बहुत सारे सुंदर उपदेश या सुंदर सिद्धांत प्रकाशित किए। आज का श्लोक में दूरवास मुनि अम्बरीश महाराज से बहुत क्रोधित होके वो कहते हैं, यो माम अतिथिम आयातम, यो यानी जिस व्यक्ति ने अम्बरीश महाराज को सूचित करते हुए, माम अतिथिम आयातम, मैं अतिथि के रूप में आया था। तो अतिथि का शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। अतिथि शब्द का अर्थ है अतिथि, यानी जिनका कोई तिथि के बिना आते हैं उसको अतिथि कहा जाता है। जो आजकल अपॉइंटमेंट लेके जाना वो वैदिक सभ्यता में नहीं था, बिना बोले घर में पहुंच जाते थे। वो ये विचार नहीं कर देते कि आप मुझे स्वागत करने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो गेस्ट का यह है कि अतिथि, बिना बोले पहुंच जाना। तो आजकल बोल के भी जाने के बाद भी घर में थोड़ा सा वो देखते हैं, बराबर वही व्यक्ति है क्या, वो इसमें से देखेंगे। लेकिन पहले जमाने में ऐसा था कि घर को कोई ताला भी नहीं लगाता था। तो अतिथि का अर्थ है अतिथि, यानी कोई निश्चित समय के बिना जो आ जाता है उसको अतिथि कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता के अनुसार अतिथि सत्कार अति आवश्यक है। अतिथि सत्कार जो नहीं करता है वो मनुष्य करके माना नहीं जाता है। शास्त्र में कहा गया है, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो भवा अतिथि देवो भवा। इस प्रकार माता पिता और आचार्य भगवान के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार अतिथि भी भगवान के प्रतिनिधि है। ऐसे माना जाता है कि जो समय को निर्धारित किए बिना या अपॉइंटमेंट लिए बिना आपके घर में या आपके पास पहुंचता है तो वो व्यक्ति भगवान ही है या भगवान है ही भेजा है। ये बात बहुत वैदिक सभ्यता में बहुत कड़ाई से पालन किया जाता था। तो ये जो अतिथि सत्कार करने के द्वारा अतिथियों को आदर करके उनको भोजन खिला के उनको अच्छी तरह से संतुष्ट करने के द्वारा भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार आचार्य को प्रसन्न करने से हमारी भगवान की प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार अतिथि को प्रसन्न करने से हमारी भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में अतिथि का सत्कार अच्छा होता है उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं पड़ता है, हर प्रकार का सौभाग्य रहता है। यानी प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है, कम से कम जब अतिथि आते हैं उनको एक चटाई तो बिछा सकता है और एक शीतल जल तो प्रदान कर सकता है, मीठी वचन तो कह सकता है, इसके लिए तो कोई खर्चा नहीं लगता है। तो इतना तो कम से कम कर सकता है और करना चाहिए, क्योंकि क्यों है, अतिथि देवो भवा। पहले जमाने में ऐसा था, या मध्वाचार्य के जो लीला में हम जानते हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य के जो पिताजी हैं मध्य के हेबट, वो कुछ कर्जा लिए थे कक्कर शेट्टी से, कुछ बैल खरीदने के लिए कर्जा था, वो कर्जा लिए थे और कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। तो बिना निमंत्रण दिए या लिए या अपॉइंटमेंट लिए हुए कक्कर शेट्टी पहुंच गए, यानी अतिथि हो गए। वो पहुंच के घर में बैठ गए मैं कहा कि जब तक आप मुझे अपना जो पैसा वापस नहीं दोगे, कर्जा वापस नहीं दोगे, तब तक मैं आपके घर में कुछ पानी तक नहीं पीऊंगा। और इधर मध्वाचार्य जो है हनुमान जी है, भीम है, रुकोदर है, उनको बहुत भूख लग रहा है। उनकी माँ के पास जाके बोलते हैं मुझे खिलाओ। माँ बोलती है जब तक आपका अतिथि नहीं खाएंगे तब तक हमें मैं कैसे खिला सकती हूँ। अतिथि जब ही खाएंगे जब वो कर्जा चुकाएंगे, वो सब जाके निमंत्रण, आप कम से कम कुछ तो एक गिलास तो पानी पीजिए। नहीं, क्योंकि वो कक्कर शेट्टी को मालूम था कि ये जो मध्वाचार्य के जो घर में है वो सभ्य लोग हैं, जब तक अतिथि को नहीं खिलाया जाए तब तक वो शिकार वो कुछ खाएंगे नहीं, वो बच्चे को भी नहीं खिलाएंगे। मध्वाचार्य को आधा घंटे में भूख लगता है, जाके माँ के पास बोले क्यों नहीं खिला रहे। माँ ने कहा देखो अतिथि आए ना वो अभी तक खाए नहीं है, तो मैं कैसे खिला सकती हूँ तुमको। तो बोलते कि वासुदेव था उनका नाम उस समय, वासुदेव ने पूछा कि आप क्यों नहीं खा रहे हो। माँ ने कहा उन्हीं से पूछो। तो वासुदेव जाके हो उस चक्कर से उन्होंने कहा तो क्यों नहीं खा रहे हो आप। माँ बोलती जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मुझे नहीं खिलाएगी, आप खाओ। चक्कर सेठ ने कहा नहीं, तुम्हारे पिताजी का कर्जा है, कर्जा जब तक वापस नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खिलाऊंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो मासूदेव ने कहा अरे ये तो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना क्यों भूखा रखा मुझे, चलो आपका कर्जा मैं चुका दूंगा। तो चक्कर सेठ बोला कि ये बच्चा जो है कुछ बड़ा प्यारा है, उसको उनकी बातों सुन के उनकी बातें सुन के बहुत मोहित हो गए। मोहित हो गए बच्चे के साथ में कक्कर सेठ गए, तो बच्चे ने क्या किया, वासुदेव ने कुछ इमली के बीज थे, इमली का बड़ा वृक्ष है अभी भी वृक्ष है, उसके बीज निकाल के उन्होंने कक्कर शेट्टी के हाथ में दिया, बोला कि तुम्हारा कर्जा चुक। कक्कर शेट्टी बोला हाँ हाँ बराबर। तो हाथ में सोचा कि बच्चा कुछ खेल रहा है, जो उन्होंने जैसे खोला उनके हाथ में इमली के बीज थे लेकिन वो सोने के बीज थे। तो इसके द्वारा क्या हो गया, उनका कर्जा चुक गया। तुरंत आके उस बराबर एकदम पूरा नाश्ता स्वीकार किया। तो मध्यव ने कहा कि आप सर अचानक क्या हो गया आपको। तो कक्कर शेट्टी ने कहा आपके बेटे ने मेरा कर्जा आपका कर्जा चुका दिया है। तो इतना हद तक था कि अभी भी 500 साल पूर्व के 800 साल पूर्व की बात है कि जब तक अतिथि आते हैं या घर में अगर कुछ ग्रहण नहीं करते वो घर वाले जो हैं बड़े परेशान हो जाते हैं या बड़े दुखी हो जाते हो, सोचते हैं कि हमने क्या पाप किया कि आप हमारे घर में कुछ स्वीकार नहीं कर रहे हो। कम से कम पानी तो पीजिए। आप कोई भी किसी के सभ्य घर में जाएंगे तो ऐसा वर्णन है कि अतिथि आए और कुछ स्वीकार किए बिना वो गए, इसका अर्थ है कि वो परिवार वाले बड़े पापी परिवार माना जाता है। वो बड़े दुखी हो जाते हैं, हमने क्या पाप किया जिसकी वजह से आप हमारे घर से कुछ पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं लिया। तो ये अतिथि सत्कार माना जाता है। तो इधर अतिथि सत्कार का उल्लंघन करना या धर्म का व्यतिक्रम माना जाता है। अभी इधर दुर्वास मुनि क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति माम अतिथि आयातम, मैं अतिथि के रूप में आ गया था और उन्होंने एक अच्छा काम किया। क्या किया, आतिथ्येर निमंत्रिय च। तो अम्बरीश महाराज ने मेरा आतिथ्य को स्वीकार किया है, यानी मेरा अतिथि के रूप में मुझे स्वीकार किया और आतिथ्य निमंत्रिय च, बाद में स्वागत किया, निमंत्रण किया। निमंत्रण करने के बाद अच्छा क्या किया, तो ये भले ही मुझे स्वीकार नहीं करते, चलो बोले जाते चले जाओ कुछ भिक्षा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें पहले निमंत्रण दिया। निमंत्रण करने दिए देने के बाद उन्हें क्या किया, अदत्वा मुझे भोजन नहीं खिलाया। अभी किसी को निमंत्रण दो, निमंत्रण दे के उनको खिलाओ मत कुछ, आप भोजन मत खिलाओ, खिलाए बिना तो क्या करो, भुक्त्वाम तस्य, वो स्वयं खा लिया। ने क्या किया, भुक्त्वाम अदत्वा भुक्त्वाम, अदत्वा भुक्त्वाम, अदत्वा के अर्थ क्या है, मुझे दिए बिना वो खुद खा लिए। अदत्वा भुक्त्वाम तस्य तस्य सद्या, ऐसा व्यक्ति अम्बरीश महाराज को जो निमंत्रण देके मुझे खिलाए बिना वो खुद खा लिया, सद्या सद्य मतलब तुरंत मैं अभी क्या करूंगा, ते दर्शते फलम, उस व्यक्ति को यानी अम्बरीश महाराज को ते क्या करूंगा, दर्शते दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, फलम, क्या फल दिखाऊंगा, आतिथ्येन धर्मम व्यतिक्रमम फलम, आतिथ्य धर्म का जो व्यतिक्रम करने का जो फल है मैं दिखाऊंगा, ये श्लोक का अर्थ है। दर्शते फलम क्या दिखाना चाहते हैं, आतिथ्येन धर्म यानी अतिथि का सत्कार का जो धर्म है उसका व्यतिक्रम करने का जो फल है मैं क्या करूंगा, दिखाऊंगा। तो ये श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है। तो सबसे पहला ये जानना चाहिए कि दूर्वास मुनि कौन है। दूर्वास मुनि भगवान के भक्त है लेकिन योगमिश्र भक्त है, और जिसका आकर्षण ब्रह्म के प्रति है। और ये नहीं समझना चाहिए कि दूर्वास मुनि कोई कम व्यक्ति है। दूर्वास मुनि साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण जीव नहीं है, महान है, महान योगी है, महान ब्रह्म में हमेशा उनका ध्यान रहा रहता है, और रुद्रांश है। दूर्वास मुनि साधारण जीव नहीं है। तो इन सादा ऐसे दूर्वास मुनि के द्वारा भगवान अनेकों अनेकों लीलाओं को संपन्न करते हैं। अभी अम्बरीश महाराज और दूर्वास मुनि में जितनी लीला चल रहा है ये किसकी योजना से चल रहा है, भगवान की योजना से ही चल रहा है, भगवान की इच्छा से चल रहा है। तो इसलिए पिछले श्लोक के साथ थोड़ा इस श्लोक का संबंध है। जहां जैसे अम्बरीश महाराज ने जलपान किया, जलपान क्यों किया, श्रुतियां हैं, श्रुतियों में कहा गया है तोयम ग्रहित्वा न भुंक्ये इति। अगर कोई जल स्वीकार करता है वो भोजन करने के बराबर नहीं है। कोई मान लीजिए कोई जल पीता है, हम ये नहीं कहेंगे उसने खा लिया, भोजन ग्रहण किया। और दूसरी ओर अगर कोई एकादशी व्रत पालन करने के बाद द्वादशी व्रत को जब या एकादशी को पारण करने जाता है, अगर उसने द्वादशी को या एकादशी को निर्जला किया है, वो जल से भी वो पारण कर सकता है। तो जल स्वीकार करना द्वादशी का व्रत को पारण करना हुआ, और साथ साथ में भोजन भी नहीं हुआ, ये शास्त्र की विधान है। तो ये शास्त्र का विधान को समझते हुए अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, जल ग्रहण किया था और उन्हें द्वादशी का जो व्रत को पारण किया था। और जैसे अम्बरीश महाराज आए तुरंत उनके अंदर क्रोध आया, और उस क्रोध में उन्होंने अम्बरीश महाराज से इस प्रकार की बातें कहने लगे, या आज के जो श्लोक और कल के श्लोक। उन्होंने कहा, अम्बरीश महाराज ने कहा कल के श्लोक में, अहो यस्य निशंसस्य, निशंसस्य अहो अस्य निशंसस्य। तो तुरंत अम्बरीश महाराज को दूर्वास मुनि क्रोध में डांटने लगे। सबसे पहला डांट उन्हें क्या सुनाया, उन्हें कहा कि निशंसस्य, निशंसस्य का अर्थ है कि आप बहुत क्रूर हो, क्रूर व्यक्ति हो। निशंसस्य ये क्रूरता को सूचित करता है, यानी जिनके हृदय में इतना कठोरता है नरों के प्रति, नृक अर्थ है नर, और शमसस्य शमन करने की या उनकी लोगों की जो प्रवृत्तियों को सहन करने की जिनकी शक्ति नहीं है, यानी क्रूर व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति के पास ही ऐसा भाव रहता है कि वो सहन नहीं कर सकता, जो सहन नहीं कर सकता वो क्रूर माना जाता है, वो दुष्ट माना जाता है। तो निशंसस्य ने सबसे पहला डांट किया। अभी अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त है भगवान के, और दूर्वास मुनि इतने महान योगी है, तो क्या दूर्वास मुनि के लिए उचित है इस प्रकार डांटना, उचित नहीं है। लेकिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, भगवान की योजना से सब हो रहा है। तो इसलिए शास्त्र में एक विशेषता होती है, खास करके शास्त्र की रचना या वक्तव्य किसी का भी होता है वो सरस्वती कृपा से होता है। सरस्वती देवी जब तक आशीर्वाद नहीं देती तब तक हम कोई भी वचन बोल नहीं सकते। प्रत्येक वचन जो भी हम कहते हैं वो सरस्वती का कृपा है, तभी हम बोल पा रहे हैं। अभी सरस्वती देवी वाक शक्ति का देवता होने के नाते वो कभी भी अपनी वाक शक्ति के द्वारा भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करती। तो अभी दुर्वास मुनि अपनी क्रोध में अम्बरीश महाराज से कहा, निशंसस्य, आप कौन हो, बहुत क्रूर हो। लेकिन सरस्वती देवी वही दुर्वासा के मुख से उन अम्बरीश महाराज की स्तुति कर रही है। क्या स्तुति कर रही है? निशंसस्य का दूसरा अर्थ है जो नृ जिनका संशयात्मा यानी संवादन करते हैं, यानी जिनको गुणगान करते हैं। अभी देखिए अम्बरीश महाराज का प्रसंग अभी कितने साल पहले हुआ, लेकिन अभी भी लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। अम्बरीश महाराज की भक्ति का महिमा का गुणगान सारे लोग आगे आने वाले करने वाले हैं, इस बात को सरस्वती देवी दुर्वास मुनि के मुकाबले से कह रही है। इसको सारस्वत अर्थ कहा जाता है। वैसे भगवद गीता में भी और अन्य शास्त्रों में इस सारस्वत अर्थ उल्लेखन किया गया है। जब भगवान गोवर्धन की लीला किए उस समय सारे ब्रजवासियों को इंद्र की सेवा से हटा के उन्होंने कहा गोवर्धन की सेवा करो, गोवर्धन का पूजा करो। तो इंद्र को भी बहुत गुस्सा आया। इंद्र साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है, इंद्र कौन है, वो भगवान के भक्त है लेकिन भौतिकवादी भक्त है। तो उन्होंने अपने गुस्से में इंद्र ने क्या कहा, बालिशम शब्दम पंडितमानिनम, ऐसे ऐसे वचनों से कृष्ण को उन्होंने डांटा। बालिशम कहते बालक, तो ये बालक किसी को बोला तुम बालक हो, बच्चे हो। तो इंद्र ने कृष्ण को ऐसा डांटा। लेकिन सरस्वती देवी इसी बालिशम शब्द के द्वारा क्या समझा रही है, क्या बता रही है, बालक का बच्चे का स्वभाव होता है सरलता। कृष्ण जो है बहुत सरल व्यक्ति है। शब्दम, शब्दम का अर्थ है हठी व्यक्ति और निष्ठुर व्यक्ति, ऐसा इंद्र ने उनको डांटा कृष्ण को। लेकिन शब्दम का और एक अर्थ है जिनकी वचन हमेशा सत्य होते हैं। और बालिशम शब्दम पंडितमानिनम वाचलम, पंडितमानिनम वाचलम, माचलम का अर्थ क्या है, जो बड़बड़ करने वाला। वैसा इंद्र बोल रहा है कि कृष्ण को कि तुम माचलम, बड़बड़ करने वाला बच्चा है। लेकिन वही सरस्वती देवी के अनुसार वाचलम का अर्थ है जिनका गुणगान हर जगह होता है, वो वाचलम का और एक अर्थ है। और इंद्र ने डांटा है बच्चे को, तुम बच्चे हो, बड़बड़ करते रहते हो, अपने आप को बड़ा पंडित मानते हो, पंडित मानिनम। लेकिन सरस्वती देवी के अनुसार पंडित मानिनम का अर्थ क्या है, सारे पंडितों के द्वारा माननीय व्यक्ति है। वैसे ही हिरण्याक्ष की मृत्यु होने के बाद हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित होकर विष्णु को उन्होंने डांटा। वैसे दो तीन श्लोक है जहां क्रोध से उन्होंने डांटा, लेकिन सरस्वती देवी वही डांट को क्या कर रही है, गुणगान के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वैसे भगवद गीता में भी एक जगह दुर्योधन ने कहा, देखो भीष्म पितामह आप चिंता मत करो, मेरे और इतने इतने युद्ध आप सेना है, मदरते तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहणा मदरते तक्त जीविता, ने कहा हमारी ओर ऐसे ऐसे शूर वीर है जो भीमार्जुन समायुधी, भीम अर्जुन अनेकों अनेकों शूर वीर है जो मदरते तक्त जीविता, मेरे लिए वो अपने प्राण को त्याग करने के लिए तैयार है, मदरते तक्त जीविता, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वही सरस्वती देवी दुर्योधन के मुख से क्या कहलवा रही है, मद अर्थ का दूसरा अर्थ है मेरे वजह से। दुर्योधन सोच रहा है कि मेरे लिए वो प्राण त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरस्वती देवी उसका दूसरा अर्थ लेते हुए कहते मेरे वजह से वो सब मरने वाले हैं। अर्थ वही है मद अर्थ, तो इसको सारस्वत अर्थ कहा जाता है। तो इधर भी दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को डांटना जो है वो डांट भले ही दुर्वासा को लग रहा है मैं डांट रहा हूं, लेकिन सरस्वती देवी वही दुर्वासा के मुख से अम्बरीश महाराज का गुणगान कर रही है। सबसे पहला गुणगान उन्होंने किया निशंसस्या, सारे लोग ये प्रसंग के बाद अम्बरीश महाराज को क्या करने वाले, संस्तुति करने वाले हैं। संशस्या का संस्तुति सम्यक रूपेण यशः स्तुति इति संशय सम्यक रूप में संपूर्ण रूप में अम्बरीश महाराज की ख्याति बढ़ने वाली है। और दूसरा श्रियोन्मत्तस्य, तो श्रियोन्मत्तस्य का अर्थ है दुर्वास मुनि के अनुसार श्रियोन्मत्तस्य का अर्थ क्या हुआ, श्रीय यानी श्री मतलब बहुत सारा ईश्वरी के द्वारा, उन्मत्तस्य बहुत मदोन्मत्त हो गए मदोन्मत्त हो गए यानी पागल हो गए अपने ऐश्वर्य के द्वारा। लेकिन सरस्वती देवी यही शब्द जो है ये श्रीयोन्मत्तस्य यही शब्द के द्वारा क्या कर रही है, वो सरस्वती देवी अम्बरीश महाराज को वो स्तुति कर रही है। कैसे स्तुति कर रही है, श्रिय उन्मत्तस्य श्रियान्मत्तस्य। जैसे आप जानते हो कि उपदेशामृत में एक श्लोक है जहां उत्साह निश्चयाधैर्य नहीं, क्या दूसरा श्लोक, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। ये नियमाग्रह जो है उसको दो तरीके से संधि विच्छेदन हो सकता है, नियमा प्लस अग्रह और नियमा प्लस आग्रह। एक होता है सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरा होता है अकार संधि। ये दो संधियों के अनुसार उसको विच्छेदन किया जा सकता है। उसी प्रकार श्रिया प्लस उन्मत्तस्य, श्रिया प्लस अउन्मत्तस्य, यानी ये अम्बरीश महाराज के इतना सा ऐश्वर्य होने के बाद भी वो उसके द्वारा वो पागल नहीं होते, उसके द्वारा वो अहंकार उनको नहीं आता है। तो दुर्वासा मुनि सोच रहे हैं कि ये अपनी ऐश्वर्य के द्वारा मदोन्मत्त हो गया है, लेकिन वही दुर्वासा मुनि के मुख से सरस्वती देवी क्या कहला रही है, ये अम्बरीश महाराज इतना सारा ऐश्वर्य संपन्न होने के बाद भी वो ऐश्वर्य के द्वारा उनके अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं है, बड़े नम्र है। बाद में पश्यता धर्म व्यतिक्रमम विष्णु, अम्बरीश महाराज कह रहे हैं देखो ये व्यक्ति इतना अहंकार से युक्त होके धर्म को व्यतिक्रम किया, तब विष्णोर व्यतिक्रमम विष्णोर धर्म व्यतिक्रमम विष्णोर। तो सरस्वती देवी इसी बात को क्या कहती हैं, धर्म व्यतिक्रमम वी, वी का अर्थ क्या है कि इसका व्यतिरेक, वी जो है व्यतिरेक को सूचित करता है, धर्म व्यतिक्रमम व्यतिरेकस्य, व्यतिरेक अस्वीकार क्या है उसका ठीक उल्टा। विष्णु का जो पहले वाला जो वी है वो धर्म व्यतिक्रम को लग जाता है, तो लग के वही दुर्वासा मुनि के मुख से सरस्वती देवी क्या कहती हैं, जो धर्म व्यतिक्रम का विपरीत फल जिससे प्राप्त किया, यानी धर्म को पालन करने का फल। अम्बरीश महाराज ने कौन सा धर्म पालन किया इधर, तब उसका वर्णन आता है अभक्तस्य का अर्थ क्या हुआ, विष्णु और अभक्तस्य। दुर्वासा मुनि सोचते हैं कि ये विष्णु का कौन है, भक्त नहीं है, लेकिन सरस्वती देवी के अनुसार ये आ जो शब्द है वो विष्णु में लग जाता है, तो भक्तस्य विष्णु और भक्तस्य यानी विष्णु का भक्त है।
तो ऐसे सरस्वती देवी इसको स्वीकार करती है। बाद में ईश मानिनः, अपने आप को बड़ा ईश्वर मानता है ऐसा दुर्वास मुनि सोच रहे, लेकिन वही दुर्वास मुनि के मुख से सरस्वती देवी क्या कहती है, जो ईश्वर को मानता है। ईश मानने का दो अर्थ है, यानी अपने आप को ईश्वर मानना, दूसरा क्या है, ईश्वर को मानना। तो जो विष्णु वास्तविक ईश्वर है उनको पूर्ण तरीके से मानने की वजह से वो विष्णु का भक्त है। यानी विष्णु को मानना का अर्थ क्या है, जिन्होंने द्वादशी व्रत को अच्छी तरह से पालन किया। अभी ये सारस्वत अर्थ को आगे बढ़ाते हुए ये श्लोक में भी बहुत सुंदर सारस्वत अर्थ है। देखते हैं ये श्लोक का सारस्वत अर्थ शब्द के हिसाब से नहीं है बल्कि भाव के हिसाब से है। अरे पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज को उन्होंने डांटा, लेकिन अंततः आप अम्बरीश महाराज को उन्होंने क्या किया, स्तुति किया। अभी स्तुति करने के बाद आचार्य कहना है कि अम्बरीश महाराज के या दुर्वासक मुनि के मुख से सरस्वती देवी कुछ और विशेष बात प्रकाशित कर रही है। क्या प्रकाशित कर रही है, ये बता रही है सारे जगत को दुर्वास मुनि के द्वारा कि खाली मैंने अम्बरीश महाराज का गुणों को गान किया है, अभी उनके गुणों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगे। अभी इस श्लोक में दो सद्यते दर्श्यते फलम, दर्शये फलम, इसका अर्थ क्या है, अभी दुर्वास मुनि ने सोचा या परीक्षित या सरस्वती देवी दुर्वास मुनि के द्वारा व्यक्त करा रही है, क्या व्यक्त करा रही है, खाली अम्बरीश महाराज का मैंने गुणगान किया, अभी मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, सत्य अभी दिखाऊंगा मैं, क्या दिखाऊंगा, फलम, किसका फल, द्वादशी व्रत को अच्छी तरीके से पालन करने का जो फल है उस फल को मैं दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, आगे कहा गया है यो आम माम अतिथिम आयातम, मैं अतिथि के रूप में आया और उसने आतिथ्य निमंत्रचा, अतिथि के रूप में मुझे अच्छी तरह से निमंत्रण दिया। निमंत्रण करने के बाद अदत्वा भुंक्त्वाम सत्या, अदत्वा मुझे वो भोजन खिलाए बिना, भुंक्त्वा वो खुद भोगे, लेकिन क्या भोगे, व्हाट डिड ही एक्सेप्ट, तो उन्होंने जल को ग्रहण किया। तो दुर्वास मुनि ने अम्बरीश महाराज की इस बुद्धि को स्तुति करते हुए कि अदत्वा भुंक्ते तस्य सद्य, इस प्रकार अम्बरीश महाराज की इतनी महान बुद्धिमता है, मुझे भोजन खिलाए बिना और स्वयं अपनी द्वादशी व्रत को ही पालन किया, तो इस प्रकार की जो सूक्ष्म बुद्धि अम्बरीश महाराज के अंदर होने की वजह से मैं उनको दिखाऊंगा, सारा जगत को दिखाऊंगा अम्बरीश महाराज का द्वादशी व्रत करने का फल क्या है। तो मैं क्या दिखाऊंगा उनको, सबसे पहले दिखाऊंगा कि मेरे जो जटा से उत्पन्न हुआ जो असुर है वो अम्बरीश महाराज जैसे भक्त होते हैं, जो द्वादशी व्रत को पालन करते हैं या भक्ति के कार्य में दृढ़ता से लगे हुए हैं, कितना ही बड़ असुर को आप उत्पन्न क्यों ना करो, असुर कुछ नहीं कर पाएगा, नंबर वन। दूसरा क्या दिखाऊंगा कि सुदर्शन चक्र के सामने ये कोई भी असुर जो है वो टिक नहीं सकता। और तीसरा मैं ये दिखाऊंगा कि ये सुदर्शन चक्र में इतना शक्ति है कि वो कितना भी बलशाली व्यक्ति भी क्यों ना हो मेरे जैसा, वो सारे बलशाली व्यक्तियों का बल को हरण कर सकता है। चौथा चीज के मैं क्या दिखाऊंगा कि मेरे जैसे जो ब्रह्मवादी हैं वो अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्त के सामने कुछ भी नहीं है, वो सब वो फेल हो जाते हैं। भले वो कितने बड़े योगी क्यों ना हो, बड़े कितने बड़े कर्मी क्यों ना हो, भले वो कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, वो भक्त के सामने सब फेल हो जाते हैं। ये चार बातों को मैं सद्य दर्शते फलम, भक्त बनने का फल क्या है, भक्ति करने का फल क्या है, सारा जगत को मैं दिखाने वाला हूं या दिखाऊंगा। ये इस श्लोक का सारस्वत अर्थ है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ये चार बातें जो श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, इनमें से खाली एक बात को उल्लेखन करते हैं कि उन्होंने कहा हरवा भक्तस्य कुतो महद्गुणा, कहा जो हरि का शुद्ध भक्त नहीं होता है उनके अंदर कहां महान गुण है, कहां शक्ति है, कहां ईश्वर्य है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए ओनली ए डिवोटी इमर्जेस विक्टोरियस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, केवल भक्ति ही एकमात्र व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में जीत सकता है। एज लिशोन इन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग राइवलरी बिटवीन दुर्वासा एंड अम्बरीश महाराज, अभी दिखाने वाले हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त और भक्ति, ये तीन महाबल है। ये तीन महाबल के सामने कितना भी भौतिक ऐश्वर्य, कितना भी प्रकाशित करे कोई व्यक्ति, उसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ इट। भौतिक दृष्टिकोण से वो कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, भक्त और भक्ति और भगवान के सामने वो तुच्छ है। भले ही कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वो लंबा समय तक नहीं रहता है। केवल भक्त और भक्ति और भगवान, ये तीनों ही सत्य हैं, ये तीनों ही महाबल है। तो भागवत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है पांचवा स्कंद का, इसमें कहा गया है कि जो क्या हरवा भक्त से शुरुआत क्या है, यस्यास्य भक्तिर भगवत के किंचन सर्वैर गुणे सत्र समासते सुरा, हरवा भक्त से कुतो महद्गुण मनोवृत्ति नास्ति दावतो बही। जो मन का रथ के ऊपर बैठ के धावतो, वो भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? वो मन जहां लेकर लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, मन के रथ के ऊपर बैठ के भाग रहे हैं। इसकी वजह से उनके पास कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना, कितना भी शक्ति क्यों ना हो, वो भक्त के सामने कुछ भी नहीं है। भक्तों के पास ऐसा लग सकता है कोई शक्ति नहीं है, गरीब है, सुंदरता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त के सामने ये सब चीजें फेल हो जाता है। भक्ति में इतना शक्ति है, ये बात को इस प्रसंग में दिखाया जा रहा है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि एक भौतिकवादी व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, बहुत ऐश्वर्यवान है, या बहुत तथाकथित भौतिक सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन बीइंग मेटीरियली वेरी पावरफुल हैज नथिंग टू डू विद डिवोशन। जैसे रावण को देखा जाए, रावण कितना शक्तिशाली था, वो सारा ग्रह को अपने आधिपति में रखा था, सब कुछ किया था, लेकिन अंत में क्या होगा, क्या हुआ, उनका विनाश हुआ। तो ये प्रसंग के द्वारा हमको ये सिद्ध हो रहा है, पता लग रहा है कि भक्ति का महिमा क्या है, भक्त का महिमा क्या है, और भगवान की महिमा क्या है। भगवान की महिमा क्या है, और भक्त को हर समय वो रक्षा करते हैं, ही प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। तो भागवत का प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक श्लोक में यही तीन चीजों का गुणगान हुआ है। नारद व्यास संवाद में नारद जी व्यास को यही बात कहते हैं, तुम ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर भक्ति का महिमा प्रत्येक प्रसंग में उल्लेखन किया गया हो। तो दुर्वासा मुनि इस भक्ति की और भक्त का महिमा को प्रकाशित करने के लिए एक रोल कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर रावण नहीं होता तो राम का महिमा कैसे प्रचार होता, है कि नहीं? अगर विलन नहीं है तो हीरो का महिमा कैसे पता लगता। तो कभी कभी शास्त्रों में जब इस प्रकार का विलन का रोल हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि अभी विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि को साधारण नहीं समझना चाहिए। दुर्वासा कौन है? इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। वो कहां कहां पहुंच जाते हैं, बड़े तपस्वी है, लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। वो ब्रह्मवादी है, योगमेश्वर भक्त है, लेकिन फिर भी उनको निंदा करना भी इन प्रसंगों में उचित नहीं है। कभी कभी हम ऐसा रोल को देख के तुरंत बोलते हैं कि दुर्वासा नॉन डिवोटी। नहीं नहीं नहीं, दुर्वासा इज ऑल्सो ग्रेट पर्सन। नहीं तो अमरीश महाराज की ख्याति को बढ़ाने के लिए भगवान ने दुर्वासा मुनि को उन्होंने उस प्रसंग में भेजा। तो ये बात हमको इस श्लोक से प्राप्त होता है, दो श्लोकों में से। हरे कृष्ण, ऐसे श्लोक थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने। अरे कोई प्रश्न पूछिए। हाँ 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 अच्छा। इनका पहला प्रश्न है, मान लो कि कोई अतिथि आए और वो एकादशी पालन नहीं करते, क्या उनको राइस खिला सकते हैं? आपका प्रश्न है, कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है लेकिन फिर भी समन्वय है, उसका उत्तर है। तो जो अतिथि आए, वो अतिथि एकादशी के दिन आए, ने बोला कि मुझे राइस खिलाओ, राइस चाहिए, तो ये समय काल परिस्थिति के ऊपर आधारित है। आप कौन हो, आप किस स्तर में हो, और अतिथि किस रूप में आए, कौन से स्तर में है, आपकी योग्यता, आपकी परिस्थिति उसके ऊपर आधारित है। अगर आप मठ में हो, जैसे मंदिर में हो, एकादशी का दिन है, उस दिन जो है गवर्नर महाराष्ट्र का वो आ रहे मंदिर में, और वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है एकादशी के दिन अन्न में पाप रहता है, लेकिन प्रभुपाद जी के संस्था में ये जो है प्रचार महत्वपूर्ण है, प्रचार इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रसंग हैं, ये जो डिसीजन है, जो निर्णय है, ये मंदिर का मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है, वो क्या उचित है प्रचार के लिए वो सोचना, क्योंकि स्मर्तव्य संविष्टो विस्मर्तव्य निजाचित सर्वे निषेधास्युर एतयोरेव किंकरा। भगवान विष्णु का स्मरण करना तुम कभी नहीं भूलना, ये सारे नीति नियम का सब किंकर है। तो इसके विषय में बड़ा चर्चा हुआ था हमारे स्वीट स्टॉल में, एकादशी के दिन समोसा क्यों बेचते हो? बहुत हंगामा किया है, तो बहुत साल पहले की बात है, तब मैं स्वयं लिखा था लेटर, किनको? भानु महाराज को लिखा था, भीमा प्रभु को लिखा था। भानु महाराज को रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत जो है वो भक्तों के लिए है, जो पालन कर रहा है उनके लिए है, जो एकादशी पालन नहीं कर रहा है, जो भक्ति नहीं करता है, उनका उद्धार वो समोसा खाने से हो जाएगा, क्योंकि वो समोसा भगवान का प्रसाद है, क्योंकि भगवान एकादशी नहीं करते। एकादशी व्रत किसका है? भक्तों के लिए, तुम्हारे लिए। तो आप साल में एकादशी के दिन समोसा बेचना बड़े उचित है, नो प्रॉब्लम, करो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उद्धार करने में है कि नहीं? नहीं तो हमारा ऑडियंस कौन हो जाएंगे? जो एकादशी पालन करता है वही है, तो मंदिर में जो रहने वाले वही है, और अपने कांग्रीगेशन को ही लेके अगर मृदंग बजाना है, कीर्तन करना है, वही लोगों को लेके, तो मंदिर की क्या आवश्यकता है? हमारा प्रचार का आंदोलन है, प्रचार का आंदोलन क्या है, अर्थ क्या है, हम प्रत्येक व्यक्ति का हित चाहते हैं, है कि नहीं। अगर वो समोसा चाहते हैं एकादशी के दिन, तो समोसा भगवान का प्रसाद है कि नहीं, तो उसके लिए उद्धार का कारण होगा। भले ही वो मैं मेरे लिए पाप है, लेकिन उसके लिए उद्धार का कारण होता है कि नहीं। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार मूल सिद्धांत मूल नियम को ध्यान में रखते हुए हमको एक कार्य करना चाहिए। आप जू मंदिर में जाइए, जन्माष्टमी के दिन वो शीरा हलवा बांटते हैं, और जो अन्न है वो बांटते हैं, और कुछ मैंने सुना वो सिंह दाना वो भी बांटते हैं एकादशी। जिनका वो एकादशी है वो लेंगे, जिनका वो लेंगे ये लेंगे। अंततः हमको लोगों को क्या देना है, भगवान का प्रसाद देना है। वी हैव टू गिव। थाना में रथ यात्रा हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था एकादशी के दिन, हमको न्यूज नहीं मालूम एकादशी करके, लेकिन उसी दिन वो अवेलेबल थे। 40 प्रेस रिपोर्टर आए उस दिन, ने कहा कि एकादशी है क्या करें। तो मैंने कहा मंदिर में तो प्रसाद नहीं बनेगा, एकादशी का आइटम नॉर्मल प्रसाद नहीं बनेगा। तो उधर होटल वाले से पूछा, होटल ने कहा कि हमको एकादशी प्रसाद नहीं बनाना आता है। ऐसा बहुत रिसर्च किया उधर के भक्तों ने, बोलो मुझे फोन किया है, तो प्रभु जी ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है क्या करें। मैंने कहा कि मैं मंदिर से आपके लिए एकादशी प्रसाद लाता हूँ, प्रेस रिपोर्ट को दबा के आप पूरा पनीर सब्जी पूरी सब खिलाओ, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि वो इस कौन से इंप्रेस हो जाए और अखबार में रथ यात्रा जगन्नाथ जी के बारे में वो छापे। वो सुबह पता नहीं क्या खा के आए, शाम को क्या खाने वाला है, उनको खाने से मतलब है कि नहीं। इट इज दैट। और एक प्रसंग बताऊंगा, ये सब समय काल परिस्थिति के अनुसार जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर आधारित है। ये नहीं कि उस चीज को देख के आप कुछ भी कभी भी करने शुरू कर दोगे। जब जयानंद प्रभु जगन्नाथ जी का रथ का बनाना शुरू किए थे, उनको सहायता की आवश्यकता था। रात को बहुत 1-2 बज गया था, तो उधर 4 गुंडे जैसे लोग थे, बड़े बड़े शरीर वाले, वो जा रहे थे। जयानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट किया, उनको कोई डाल नहीं सकता था, इतना नम्रता से बात किया, तो मुझे मदद कर सकते हैं, हम रथ यात्रा कर रहे हैं। बोला कि हाँ। उसमें से उसने एक थोड़ा सा देखा, आइए हरे कृष्ण वाला है ना, तो हम आपका पूरा काम करेंगे। वो सब मैकेनिक लोग थे, लेकिन तुम्हारे हाथ से मुझे दारू पिलाना होगा। तो ने कहा कि क्यों, चलो करता हूं। तो उन्होंने क्या किया, सब रथ को रिपेयर किया, पूरा काम लिया, पूरा रथ बन गया। बनने के बाद जयंत वो सीधा मंदिर में गए, मंदिर का जो तिजोरी है उधर से उन्होंने पैसा लिया, दारू का दुकान में गए, दारू खरीद के उनको बॉटल दे दिए। तब सब भक्तों ने प्रभुपाद को कंप्लेंट किया, जयंत प्रभु ने ऐसा ऐसा किया। तो प्रभुपाद ने कहा, जयंत प्रभु नोस हाउ टू एंगेज पीपल इन कृष्णा सर्विस। वो ऐसे ही पीने वाले हैं, लेकिन कम से कम उनको रथ बनाने का, जगन्नाथ के रथ को बनाने का स्वीकृति से प्राप्त हुआ। ये प्रचार यानी जो अधिकारी के स्तर में है वो निर्णय कर सकते हैं, इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आपको दूसरा प्रश्न क्या था, कोई ईर्ष्यालु है, अगर मान लो कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो आपका भक्ति को नष्ट करना चाहता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर भौतिकवादी है, उसको आप जैसे सांप क्या करता है, वो क्या करता है, फूस मारता है क्या, वैसा करके उनको भगा सकते हो। अगर वो भक्त हैं तो आपके प्रति बहुत ईर्ष्या रखता है, आपकी भक्ति का नाश को चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा उनको प्रतीत करा सकते हो कि हाँ सच में मेरा भक्ति आप नष्ट हो रहा है, उसको खुश कर दो। अगर वो खुश करना जो है भक्तों को खुश करना भक्त का धर्म है। अगर सच में आपको भक्ति में प्रगति करना है, जितना हो सके उतने भक्तों को उतना हद तक खुश करने का प्रयास करो, और आपका भक्ति अपने आप प्रगति होता रहेगा। अगर आपका पतन होने में उसको खुशी आता है, तो ये दिखाव को मेरा पतन हो रहा है, उससे खुश हो रहा है, कुछ नहीं दो हम तो अपना भक्ति करते रहेंगे। भक्ति जो है वो हृदय की बात है, वो दिखावा वाली बात नहीं। उसको दिखा सकते हो मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा ये है, वो कुछ अच्छा बराबर, यू आर ए फॉलन डिवोटी, अंदर अंदर भक्ति करो, नो प्रॉब्लम। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करना, ये जितना गुना है, दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनना भी उतना गुना है, खास करके भक्तों के समाज में। डोंट बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी फॉर अदर। मान लो कि आप बहुत अच्छा प्रचारक हो, जिसकी वजह से बहुत लोग आपकी ईर्ष्या करते हैं, चुपचाप प्रचार करो। आप पूछो कि कैसा हुआ, अरे पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है, क्या जाता हूं कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं, हटो। ये सीक्रेट है, डोंट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर्स एनवी। ठीक है, नेक्स्ट। आपका कुछ प्रश्न था, भूल गया वो प्रश्न है, सर ठीक है। हाँ हाँ, कौन कौन कर्म बंधन में पड़ा, दुर्वास मुनि को। हाँ अच्छा, भगवान की योजना से हो रहा है कि दुर्वास मुनि को ऐसा फल क्यों भोगना पड़ा? नहीं, भगवान की योजना से ही हो रहा है कि भगवान की योजना से सारा जगत को दिखाई पड़ रहा है कि भले ही दुर्वासा जैसा क्यों ना हो, वो भक्त कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर वो भागेंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि लेकिन पूरा प्रसंग में ये चीजों को दिखाई पड़ रहा है। और इसकी वजह से दुर्वासा मुनि को भी ख्याति मिला। जब तक अम्बरीश महाराज का बात चर्चा करेंगे, तब तक दुर्वासा मुनि का भी चर्चा करेंगे, है कि नहीं। तो भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा करके गोवर्धन उठा के इंद्र का जो अहंकार, उसको दमन किया। इससे बढ़कर इंद्र के ऊपर क्या कृपा है, जब तक गोवर्धन लीला का स्मरण होगा तब तक इंद्र का भी चर्चा होगा। इंद्र का भी नाम जुड़ा है ना उसके अंदर, तो ये और विशेष कृपा है। ठीक है, तंत्र श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।